राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। रामचरित पहाड़ का लोग गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। आवाज बड़ा हो जरा। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। हरे कृष्णा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलो बोलो पुकारो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधे जय राधे जय श्री राधे।
जय राधे जय
श्रील प्रभुपाद की। आज के इस 2 फरवरी के चरण पहाड़ी काम्यवन की यात्रा में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा, जय हो। अभी दोपहर के 3 बजे हैं और हम चरण पहाड़ी इस सुंदर स्थान पर बैठे हुए हैं। हो सकता है कि नींद का वेग आपको घेर सकता है, इसलिए जो आपके बाजू बाजू में सो रहे हैं उनको आप जगा भी सकते हो प्रेम से। वैसे तो मुरली की आवाज़ कहाँ कहाँ तक पहुँची, कहाँ कहाँ तक भेद करके किस किस जगह पर पहुँची, उसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि हमारा भी आप आवाज़ आपके कानों को भेद नहीं सकेगा। अगर निद्रा का प्रभाव वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। हरे कृष्णा। तो चरण पहाड़ी बहुत ही पवित्र स्थान है। सबसे पहले ही बता देता हूँ कि गर्ग संहिता में लिखा है, कोई जप मत करना कथा सुनते वक्त। चरण पहाड़ी मतलब वहाँ पर भगवान के चरण चिन्ह जहाँ पर है, ये जगह और भी जगहें हैं जहाँ पर भगवान के बहुत चरण चिन्ह हैं। गर्ग संहिता में लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान के हस्त चिन्ह, चरण चिन्ह या शरीर के किसी भी अंग के चिन्ह का दर्शन करता है, उसे दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जन्म दर्शन किया आपने ठीक से? चरण चिन्ह देखे, गाय के खुर के चिन्ह देखे, सबने देखे। हरे कृष्णा, जय हो। ये रिसाइकल किया हुआ नहीं है, नया है। हम रिसाइकल भी करते हैं, समय को देखते हुए हम सब चीज को रिसाइकल करते हैं। यूटिलिटीज इज द प्रिंसिपल, प्रभुपाद जी कहते थे यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। जो जिस समय देश काल पात्र को देखकर समय का वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए बिना संकोच। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर काम्यवन ही ऐसी जगह है जहाँ पर मैंने एक ही साथ में एक ही जगह पर आसपास में हाथ के चिन्ह भी देखे हैं, चरण के चिन्ह भी देखे हैं, बलराम के भी देखे हैं, कृष्ण के भी देखे हैं, घुटनों के भी देखे हैं और भगवान के माला के भी चिन्ह देखे हैं। लेकिन कुछ कुछ पहाड़ में हैं, बहुत गहराई में हैं, वो सब लोग वहाँ पर चढ़ नहीं पाएंगे। तो भगवान यहाँ पर बंसी बजाने को आते हैं। अभी ना बहुत शास्त्रों में इसका वर्णन है, भागवत में दिया गया है। भागवत में ऐसा लिखा है कि कृष्ण और बलराम दोनों भाई, और न केवल दोनों भाई, सारे ग्वाल बाल मुरली बजाते हुए चल रहे हैं, गाय चराते हुए, ऐसा वर्णन आया है। तो ऐसा नहीं कि केवल कृष्ण बजाते हैं, और यहाँ तक कि गोपियाँ भी बजाती हैं मुरली। और कृष्ण भगवान मुरली मनोहर, सबसे सुंदर मुरली बजाने वाले, उनके गुरु राधा रानी हैं, राधा रानी ने उनको मुरली बजाने को सिखाया। यमुना किनारे पे ऊंचे आसन पर बैठकर विद्यार्थी नीचे बैठा हुआ है, राधा रानी एक पाँव दूसरे पाँव पर रखकर ऐसे ऐसे बैठी हुई है और विद्यार्थी नीचे बैठा हुआ है, सीख रहे हैं। ये उनकी यहाँ की लीला है यमुना किनारे। तो मुरली में इतनी शक्ति है कि वो सारे ब्रह्मांडों का आवरण पार करके कहाँ कहाँ तक पहुँच जाती है। अभी कवि कर्णापुर नाम के एक संत हुए हैं, उन्होंने लिखा है कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ लिखा है, वो शायद बिल्व मंगल ठाकुर ने लिखा है, कवि कर्णापुर ने नहीं। तो बिल्व मंगल ठाकुर जी के ग्रंथ में वर्णन किया है कि यशोदा देवी और पूर्णमासी देवी के बीच में संवाद चल रहा है। पूर्णमासी ने कृष्ण को कहा था कि आप जूता नहीं पहनना ब्रज में, तो पूर्णमासी का यह कहा हुआ मानकर यशोदा देवी जब जिद करती है कि आप जूता पहनो तो वो मना कर देते हैं। यथा गावस तथा गोपाल, जैसे गाय रहती है वैसे गाय गोपाल को रहना चाहिए, मैं तो गोपाल हूँ। तो वो पूछती है क्यों ऐसा कह रहे हो, तो पूर्णमासी ने मुझे कहा था कि वृंदावन जो है वो वृंदा देवी का हृदय है, तो मैं वृंदा देवी के हृदय पर कैसे जूता चल के पहन के पहन चल सकता हूँ।
तो वो फिर आके पूछती है वृंदा देवी, सॉरी यशोदा मई पूर्णमासी से पूछ रही है कि आपने कहा था कैसे? बोला हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैंने कहा था वो तो उसको समझाने के लिए एक बाहरी कारण दिया था, लेकिन अंदर का कारण ये है कि केवल कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त करने से ही ब्रजभूमि को चैतन्य प्राप्त होता है, जीवन प्राप्त होता है, तेज प्राप्त होता है। आपको देखना तो देख सकते हैं आप, वो मैंने पूरा प्रवचन दिया है, आप ले सकते हैं, आई कैंप में पूरा लेक्चर दिया है। संक्षेप में क्या कहा जाए तो ये है कि चरण चिन्ह जब पहाड़ पर आते हैं या भगवान जब पहाड़ पर चढ़ते हैं, क्योंकि बहुत डिस्कशन हुआ पूर्णमासी के और यशोदा के बीच में, तो यशोदा देवी समझ गए कि नहीं ठीक है, अभी वो ब्रजभूमि को अगर चैतन्य जीवन प्राप्त करना है तो फिर ठीक है, मैं उनको जूता के लिए जिद नहीं करूंगी इसके आगे, लेकिन पहाड़ों का क्या? वो तो भूमि के बाद समझ गए, लेकिन पहाड़ों का क्या? पहाड़ तो कितने सख्त होते हैं। थोड़े तो चिंता मत करना, जैसे ही तुम्हारा बालक पहाड़ पे चढ़ता है ना, तो जहां जहां उसके चरण पड़ते हैं ना, वहां पागल पहाड़ जो है वो मोम की तरह मुलायम, मक्खन की तरह मुलायम हो जाता है, और चरण कमल पड़े तो मोम जैसा मुलायम पिघल जाता है, निकाल दिए तो वापस सख्त हो जाता है, लेकिन चरण चिन्हों के साथ सख्त होता है। वैसे पहले प्लेन चरण रखें, चरण का शेप लेकर ऐसे दब जाएगा वो पिघलते हुए, चरण निकाल के आगे जाएंगे तो वापस पूर्ववत नहीं होगा, चरण चिन्ह लेकर हार्ड हो जाएगा वो। और वो कहती है उसके, अगर देखना चाहती हो तो चरण पहाड़ी पे जाओ और खुद देख के आओ। तो यशोदा माई इस पहाड़ी पर आई है उन चरण चिन्हों को देखने के लिए, और अभी तो एक ही बचा है, ये तो पूरा ब्रज भूमि और ब्रज के सारे पहाड़ भगवान के चरण चिन्हों से भरे हुए थे, अभी कालायंत कालांतर से कलयुग के प्रभाव से सारे नष्ट होते जा रहे हैं, कुछ 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 बचे हुए हैं कुछ कुछ जगह पर, वो बठेन नाम का गांव है वहां पर तो बहुत सारे चरण चिन्ह थे, उधर भी अभी समाप्त होते जा रहे हैं, लुप्त तो होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा भक्ति इतना दृढ़ नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तो जब यशोदा माई आई ना, तो क्या देखती है वो कि सारे चरण चिन्ह बन रहे अपने आप, ऐसे ही बच्चा भाग रहा है पहाड़ के ऊपर, चरण चिन्ह को बनाते ही भाग रहा है, और वो उसके देख रही है कि दूर भाग रहा है बालक, और यहाँ देख रही है चरण चिन्ह को हाथ लगाकर, तो एकदम सख्त है पूरा पहाड़ की तरह, पत्थर की तरह, लेकिन बहुत सुंदर चरण चिन्ह बने हुए हैं। तो उनको ये प्रूफ पता चला कि यस, जब मेरा बालक चलता है ना तो उनके चरण के स्पर्श से ही ये पत्थर जो है ना वो पिघल जाते हैं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा शिव जी देवता हैं सब बने हुए यहाँ पर, भगवान के चरण चिन्ह अपने शीश पर धारण करने के लिए इस रूप लेकर बैठे हुए यहाँ पर। तो एक तो भगवान के चरण आते ही ये पर्वत ही मुलायम हो जाते हैं, और दूसरा कारण यह है कि जैसे ही कन्हैया मुरली बजाते हैं तो मुरली की तान सुनकर पत्थर पिघल जाते हैं। ऐसा कोई शास्त्र में, हमारे साइंस में ना, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे आप पत्थर को पिघला सकते हो, आप सोने को पिघला सकते हो, लोहे को पिघला सकते हो, तप्त लोह रस बना सकते हो, लिक्विड आयन बना सकते हो 2000 डिग्री पे, लेकिन कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं है जिससे आप पत्थर को या तो पिघला दो या तो लिक्विड बना दो, इम्पॉसिबल है। एक ही प्रक्रिया है, जब भगवान की मुरली बजती है तो ये पत्थर पिघलने लगते हैं। तो ये एक प्रमाण जो है वो कृष्ण करुणामृत से आता है। यशोदा देवी फिर जाती है उधर उधर कम्मे वन में ना, एक दूर यहाँ से, और भी यहाँ पर दूर है 25-30 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहाँ पर आदिबद्री केदार का प्रकट हो गए हैं, भगवान की इच्छा से चार धाम प्रकट हो गए हिमालय के, हिमालय ही प्रकट हो गया वहाँ पर। तो केदारनाथ में कृष्ण भगवान का मुंडन विधि रखा गया था, तो मुंडन विधि जब रखा गया तो कृष्ण भगवान को लेकर सब वहां मंडली पहुंची, तो सबसे पहले कृष्ण भगवान भागे ऊपर, बच्चे हैं ना वो सब भाग रहे हैं, सब भागते भागते भाग रहे हैं, तो यशोदा तो देख रहे हैं चरण चिन्ह बनते जा रहे हैं, तब भी उन्होंने उस प्रूफ का अनुभव किया कि यस केदारनाथ के ऊपर, इसका मतलब केदारनाथ में भगवान का मुंडन विधि संपन्न हुआ है। तैसे ब्रजभूमि में चरण चिन्ह, और भी नंदगांव में छोटे चरण चिन्ह है बालकपन के, जहाँ पर सारी गोपियाँ बैठकर रोया करती थी भगवान जाने के बाद में, उनकी याद करती थी और चरण चिन्ह की पूजा करती थी। तो ये चरण चिन्ह का ऐसा वर्णन किया गया है कि उसमें रात को चुपके से आकर गोपियाँ जो है ना, ब्रज गोपियाँ, वो कुमकुम का लेप करती है भगवान के तलवों को, और और वो तलुओं का लेप किया हुआ कुमकुम जो है वो यशोदा देवी द्वारा स्नान किए जाने पर भी धुला धुलता नहीं है, क्योंकि वो माधुरी रस का है ना, श्रृंगार रस का भाव है उसके अंदर, और ये माता जी का स्नान वात्सल्य रस का है, तो श्रृंगार रस का प्रभाव ज़्यादा है, तो वो धुलता धुलता नहीं है। और भगवान जब चलते हैं तो भगवान की इच्छा से वो कलर जो है कुमकुम का वो भूमि को प्राप्त होते जाता है, तो हर एक चरण चिन्ह को लाल रंग है और सुनहरी बॉर्डर है ऐसे तेज वाली। और उसके आसपास ही पूर्णमासी ने प्रूफ करके दिखाया यशोदा को कि उसके आसपास ही पौधे पेड़ ये सब क्या कहते हैं उद्दीपित हो रहे हैं, उनको उत्साह प्राप्त हो रहा है, तेज प्राप्त हो रहा है, जीवन प्राप्त हो रहा है, शक्ति प्राप्त हो रही है, अस्तित्व प्राप्त हो रहा है। तो ये कहते हैं चरण चिन्ह भगवान के जो है वो ब्रजभूमि का जीवन है। पृथ्वी देवी भी बहुत प्रफुल्लित हो गई थी जब भगवान के जीवन का आने का ऐलान हुआ था ना, अनाउंसमेंट हो गया था, क्योंकि उनको पता था कि यही एक भूमि ऐसी है जहाँ पर भगवान जूता नहीं पहनते हैं, बिना जूता पहन के चलते हैं, चरण स्पर्श होता है। बाकी वैकुंठ को भी यह भाग्य प्राप्त नहीं कि भगवान के नंगे पैर का चरण स्पर्श प्राप्त हो, इतनी पावन भूमि है ये, यहाँ पर ही केवल भगवान ने बिना कोई पादत्राण कोई ऐश्वर्य ना स्वीकार करते हुए जीवन बिताया है। कंदमूल खाके वन के फल खाकर वनमाला पहनकर नंगे पैर बांसुरी बजाते हुए मोरपंख पहनते हुए ऐसा सुंदर जीवन जिया है कि जो गौलोक धाम में भी नहीं हो सकता है, जो वैकुंठ में भी नहीं हो सकता है, ना स्वर्ग में हो सकता है, ना कहीं भी हो सकता है, यही एक भूमि ऐसी है। इसलिए पृथ्वी बहुत ही प्रसन्न हो गई थी जब भगवान का जन्म होने का अनाउंसमेंट किया गया। तो यहाँ पर भगवान आते हैं और मुरली बजाते हैं, तो प्रसंग शाम का है, अभी सूर्यास्त होने जा रहा है, तो गौचारण की लीला समाप्त होने वाली है। गौचारण दिन भर चलता है ना, शाम के समय गोरज मुहूर्त, जब गोरज यानी जब गाय के चरणों को लगे हुए खूर को लगे हुए धूल आकाश में उड़ती है तो उसको गोरज मुहूर्त कहते हैं, बहुत पवित्र माना गया उसको। और आम तरह से ब्रज रज बहुत पावरफुल है, लेकिन जो गाय के चरणों को लगकर उड़ती है वो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, और उससे भी एक रज शक्तिशाली है। जब रज गाय के खूर के बीच के छेद में जाके चिपक जाती है, जैसे आपका जूता समझो छेद वाला है तो उसमें सब मड़ जो है ना वो चिकल जो है उसके अंदर भर जाएगा, आपको निकालना पड़ेगा घर जाके, वो चलते टाइम भी आपके जूता के साथ चलेगा वो, क्योंकि जूते में ऐसे कई होल्स हैं सोल में, तो वैसे गाय के जो चरण है उसके अंदर बीच में ऐसे एक होता है ना छेद, बीच में जाके सब रज चिपक जाती है। तो ब्रजवासी लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, वो गाय के खास करके बछड़े के या मतलब बछिया या बछड़ा उनके चरण कमल अपने गोद में लेते हैं शाम को आने के बाद में, और उनमें से अटके हुए रज को निकालते हैं और वो इकट्ठा करके रखते हैं। और जब भी सुबह अपने काम पे जाते हैं या कोई एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं या कोई प्रस्ताव लेके सगाई का जा रहे हैं या तो क्या कुछ भी हो ऐसा बड़ा कार्य करने आ रहे हैं तो वो रज जो जमा करके उसको तिलक करके जाते हैं। हमें भी लाके दिया उन्होंने घर पे, हमारे हमने डोर में रखा हुआ है, बोले प्रभु जी इसको लगाया करो आप जब जाते हैं बाहर तब लगाया करो। वाह बढ़िया बात है, सुंदर। कृष्ण भगवान इन गायों के खुरों को चंदन और हल्दी का लेप बनवाकर लगाने के लिए गोपियों को कहते हैं। फिर गोपियां रात को कृष्ण के इच्छा के अनुसार इन गायों के चरणों को चंदन और हल्दी का लेप लगाकर उनका मालिश करते हैं। इतना प्रेम है देखो भगवान का। तो संध्या का समय है, सूर्यास्त हो रहा है और भगवान अभी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर मुरली बजाते हैं, है ना। उसमें दो प्रकार के मैसेज हैं। एक मैसेज गोपियों को है, डोंट वरी मैं आ रहा हूँ मेरे, क्योंकि गोपियाँ अभी सूर्यास्त होते व्याकुल होने लगती हैं, अभी मिलने का समय हो रहा है, दिन में दुखी रहते हैं, शाम को व्याकुल हो जाती है, क्योंकि अभी ग्वाल बालों के मिलने का समय समाप्त हो रहा है और गोपियों को मिलने का समय शुरुआत हो रही है। तो ग्वाल बालों को अचानक गायब हो जाते हैं भगवान, मुरली बजाने लगते हैं तो ग्वाल बाल ढूंढ रहे हैं किधर गए अभी तो थे, तो उनको कह रहे हैं हूँ मैं इधर ही हूँ, डोंट वरी साथ में ही हूँ आपके, और गोपियों को बता रहे हैं डोंट वरी आ रहा हूँ। ऐसा भगवान का मुरली से संदेश प्राप्त होता है, मुरली जो है ना, वो ऐसा भगवान का एक क्या कहते हैं पार्षद है कि उससे कई प्रकार के मैसेज भगवान दे देते हैं। जैसे अपने मोबाइल में कैसे होता है ना वो कॉल, तो उसमें जैसे एक आता है एन 1 2 3 4 5 हैश जो आता है ना, उसमें ऐसे एक नौ कोनी आता है उसमें, वैसे भगवान के मुरली में भी 8 छेद होते हैं और उसमें वो जो भी दबाते हैं उसके अंदर अलग अलग सुर निकलते हैं, अलग अलग सुर से अलग अलग मैसेज लोगों को मिलते हैं। तो अगर आप लोग जग रहे हो तो मैं बताता हूँ कौन से छेद में से कौन सा मैसेज पहुँचता है। सुनना है क्या सबको? ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ नहीं आया मुझे कुछ सुबराव ना, बताओ कि नहीं? आप तो ठंडी हवा में बैठे, आपको तो बीच बीच में झपके भी आ रही है, बहुत मधुर मधुर ठंड ठंड शीतल सुगंधित सुगंधित शीतल और क्या क्या बताया था हमने? 3 चीज़ बताई थी हवा के बारे में, क्या बताया था? शीतल सुगंधित और मंद 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 मंद। ऐसी हवा में केवल नींद ही आ सकती है, वो भी पाइनएप्पल हलवा खाने के बाद में, क्या कहें उसके बारे में। तो जब पहला छेद पे भगवान मुरली बजाते हैं, पहले छेद से स्वर निकालते हैं, उससे ब्रह्म शिव जैसे देवता लोग जो है उनका ध्यान भंग हो जाता है और वो सब कुछ भूल जाते हैं जब पहला स्वर उनके कर्ण छेद में प्रवेश करता है। शिव अपना डमरू बजाने लगते हैं, ब्रह्मा अचंभित होकर कमल पर बैठे हैं, कमल पर बैठकर अचंभित भ्रमित हो जाते हैं और अनंत शेष ऐसे ही नशे में जैसे झूल रहे हैं उसे झूलना आरंभ कर देते हैं। रामचरित जी आप भी झूल रहे हैं क्या? नहीं ना, जय हो। तो ये प्रथम स्वर का ये क्या कह रहे हैं अभी, मेरे लिए थोड़ा सा निद्रा के वेगों को हटाने के लिए कुछ ना कुछ बीच में बोलना पड़ता है। फिर दूसरा धुन बजती है ना, दूसरा धुन जब बजती है तो यमुना यमुना जो है वो एक दिशा में जब चल रही है उसके उल्टी दिशा में चलने लगती है। क्या बताया मैंने? यमुना उल्टा प्रवाह करने लगती है, चंद्र जो है वो उल्टी दिशा में यात्रा करने लगते हैं। तीसरे अच्छा एक यमुना जी में दो तीन परिणाम होते हैं, ये दूसरे धुन से यमुना जी में भौरे निर्माण होते हैं, यमुना जी का पानी गोल 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 घूमने लगता है और बाद में उल्टा बहने लगता है। तीसरा जो ध्वनि है, तीसरा स्वर है मुरली का, इससे चंद्र और सूर्य जैसे तारे जो घूमते हैं ना, हमको लगता है कि हम ही पृथ्वी घूम रही है, ऐसा नहीं है, पृथ्वी सूर्य के गोल गोल घूम रही है लेकिन सूर्य भी घूम रहा है, पूरा सिस्टम ही घूम रही है, एक ऐसे ऐसे घूम रहे हैं और एक ऐसे 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 घूम रहे हैं, मतलब बीच में सूर्य है वो भी किसी की प्रदक्षिणा कर रहा है और उस सूर्य की प्रदक्षिणा की जा रही है और उस पृथ्वी भी को भी चंद्र प्रदक्षिणा कर रहा है, समझो। ऐसे बहुत सारे लोग अपने अपने प्रदक्षिणा करते रहते हैं, वो सारे अपने प्रदक्षिणा में रुक जाते हैं जैसे ही भगवान की मुरली की आवाज़ आती है, दे फॉरगेट व्हाट टू डू, इसलिए रुक जाते हैं और कभी रुकते हैं तो भी उल्टा घूमने रखते हैं। चौथी धुन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ चौथी धुन जब बजती है तो सब गायें रुक जाती है और कान ऊपर करके आंख ऊपर करके पूंछ ऊपर करके ध्यान मग्न होकर स्तंभित होकर उस ध्वनि को सुनते हैं। उस मुरली के अमृत को पान करने के लिए आप इमेजिन कल्पना कर सकते हैं, गाय ऐसे आंख बंद भी नहीं कर रही, ऐसे पूंछ भी ऊपर है, दोनों कान भी ऊपर है और चित्रपट की तरह स्तब्ध हो गई है वो, और क्या हो रहा है उसका बछड़ा है जो उसके थनों को मुंह लगाकर दूध पी रहा है लेकिन वो भी ऐसे हो जाता है, तो उसका मुंह खुला है, माँ का आंचल उसके मुंह में है और दूध भी उसके मुंह में है लेकिन वो आ करके निगलना भूल जाता है, तो उसके मुंह से जो दूध टपकता है पृथ्वी इसको अमृत के रूप में स्वीकार करती है, पृथ्वी को वो अमृत प्राप्त हो रहा है गाय के मुख का, ये परिणाम होता है चौथी धुन बजाने के बाद। पांचवी धुन किसके लिए है? नो रॉन्ग, पांचवी धुन गोपियों के लिए है, राधा रानी के लिए एक स्पेशल रखी हुई है। पांचवी धुन में वो केवल केवल गोपियों को बुलाते हैं, मतलब कहीं से जब पांचवी धुन बजाई ना तो किसी को सुनानी पड़ेगी, आपको सुनानी पड़ेगी, सामने सुनानी पड़ेगी, फिफ्थ नोट जो गोपी है उनको सुनानी पड़ेगी, अगर आप गोपी हो तो सुनानी पड़ेगी आपको। तो गोपी और हमारे में क्या अंतर है बताओ, क्या करने से हम गोपी वो पांचवें दिन सुन सकेंगे। समर्पण और सेवा भाव है, पूरी तरह से समर्पित होने से मतलब अश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनम मर्महताम करो तुवा यथा तथा वा विदधा तुलंपटो मत प्राण नाथस्तु स एव ना परहा। बस इसी श्लोक में आपको पूरे गोपी भाव को आप समझ सकते हो। अश्लिष्य वा पादरताम, आप मुझे पैरों के तले कुचल दो, पादरताम पिनष्टुमाम, अदर्शनान दर्शन मत दो, दर्शन न देकर मेरे हृदय को भंग कर दो। अदर्शनान मर्म हताम, मर्म का मतलब हताम, उसको हत्या कर दो उसकी, मेरे मर्म को कुचल दो, हृदय को भंग कर दो। और अश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्म हताम करो तो वा यथा तथा वा विदधातु, जो चाहे वो करो आप, जो आपकी मर्जी है वे करो, जैसा चाहे वैसा व्यवहार आप कर सकते हो। पास बुलाओ दूर भगा दो, मैं सब विधि शरण तिहारी, राधे आ जाओ गिरिधारी, मतलब कुछ भी करो आप, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आप कभी भी आप हमें कुचल भी देंगे, फिर भी आप हमारे आराध्य प्राणेश्वर ही रहेंगे, ना हम आपको छोड़ेंगे ना आप हमें, मैं आपको छोड़ दूंगी ये उम्मीद रखना कि आप, मैं कुचल दिया है तो वो छोड़ देगी मुझे, वापस नहीं आएगी। आप कुछ भी करो, कुचल दो, गले लगाओ, पास में बुलाओ, अपना बना लो, दूर भगा दो, अपमान करो, मान दो, छोड़ दो, रख दो, जो भी आपको रखना है, चरणों में रखो, सर पे रखो, किधर भी रखो, आप हमारे आराध्य प्राणेश्वर बने ही रहेंगे और हम आपकी नित्य चिरंतन दासियां बनकर ही रहेंगी। जो चाहे व्यवहार आप कर सकते हो, ये गोपी भाव है। और ये गोपी भाव को लेकर चैतन्य महाप्रभु भी प्रभावित हैं। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, भगवान के भक्त बनकर आए थे और सन्यासी थे, सन्यासी बनकर आए थे। कहते थे स्त्रियों ने उपयोग में लाने वाली वस्तु को भी देखते नहीं थे वो, मतलब जूता वगैरह तो लकड़ी है या तो कुछ और कुछ है, लेकिन वो उसको तरफ भी देखते नहीं थे, इतने वो कठोर सन्यासी थे। और वो सन्यासी इतने कठोर थे फिर भी उन कन्याओं के नामों को जपते थे वो। समझो भी को सन्यासी होगा तो वो ऐसे लड़के का नाम लेके बोलेगा कुछ, तो ये उनका नाम जपते थे, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, गोपी, धनिष्ठा। तो कुछ कुछ शिष्यों ने उनको काफी टीका किया उनके ऊपर, कैसे आप हो, हाँ भगवान का नाम लेना चाहिए, आप उन लड़कियों का नाम क्यों लेते हो। तो वो भावावेश में डंडा लेकर भागे थे उनके पीछे मारने के लिए, उनको उनके भाव को डिस्टर्ब करने की वजह से। ऐसी थी गोपियां। आज तक के इतिहास में गोपियों के ऊपर कोई भक्त नहीं हुए हैं, भगवान के भक्ति के इतिहास में गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में आज भी गोल्ड मेडल स्थान पे निश्चित बैठी हुई हैं। नोबडी हैज कॉन्कर्ड देयर पोजीशन, कोई भी उनके स्थान को आज तक प्राप्त नहीं कर सका, इतना गोपियों का स्थान आबादित है, कोई कर ही नहीं सकता है। यशोदा माई उनको अपने पास रखती है, लेकिन रात को यशोदा माई के गोद में जो सोया हुआ कृष्ण है वो वही रहता है, और दूसरा एक गोपी कृष्ण निकलता है, वो जाता है रास में, वो यशोदा के गोद में रात भर सोता है, वो यशोदा कृष्ण है, लेकिन एक कृष्ण निकलता है गोपी कृष्ण बनकर और रात भर लीला करता है। और एक बार ये दोनों कृष्ण जो है, दो रूप एक आमने सामने आते हैं, एक तरफ से गोपियां गोपी कृष्ण को लेके आती हैं, एक तरह से यशोदा यशोदा कृष्ण को लेके आती हैं, और यशोदा भी बाद में मान जाती है कि गोपी कृष्ण जो है वो श्रेष्ठ है, जो गोपी भाव को अपने प्रतिसाद दे रहे हैं। ऐसा ये गोपियों का स्थिति है। तो वो गोपियों के लिए ये फिफ्थ टोन है। और क्या होता है उसके बाद में, पांचवा धुन, पांचवी धुन जब बजती है तो क्या होता है, बताइए, आप ही बताइए। गोपियां ऐसे ना पागल हो जाती है पूरी। एक भाई कहानी बताऊं, हाँ क्या होता है, देखो अभी भगवान ने पांचवी धुन बजा दी है, हाँ? और गोपी घर पर अभी ऐसे ही चारा निकाल कर गाय को भोजन कराने वाली थी, निकाल ही रही थी और गाय को देने वाली थी, उतने में पांचवी धुन बजी, तो पूरा दिमाग है ना उसका सिस्टम पूरा फेल हो जाता है, पावर फेलियर पूरा हो जाता है। अभी क्या सोच के रखे, तो वो तो भूल ही जाते हैं उसके बाद में, जो हमारी जो बुद्धि है ना, सार असार बुद्धि, विवेक सद 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 विवेक बुद्धि, जो भी बुद्धि होती है ना, हमारे रैशनल बुद्धि होती है ना, वो सब सब कुछ भ्रमित हो जाती है पूरी तरह से। और क्या होता है, तो वो जब चारा निकाल रही है तो बीच में ससुर जी बोलते हैं, बहू थाली लगा लो, भोजन का समय हो गया है। तो बहू बहू जो है ना गोपी, वो चारा निकाल कर रखती है, वो बाजू में रखे ससुर जी की थाली बनाना आरंभ करती, इसमें रोटी सब्जी वगैरह दे रही है। उतने में मुरली बजती है, हो गया ना गड़बड़, अभी इसको भी इसी समय बजना था। हाँ, अरे डंडे पड़ेंगे, डंडे ऐसे बजे बजेंगे तो, लेकिन बज गई, क्या करें, वो बज गए। तो उसने क्या किया, थाली उठाकर गाय के सामने रखी और भूसा उठाया और ससुर को सामने रखा। ऐसा होता है चमत्कार, है ना। तो ससुर जी बोल रहे, अरे बाबड़ी है गई का तू, पागल हो गई तू, क्या कर रही हो। तो उसको समझ में नहीं आ रहा, वो खुद को मालूम है क्या कर रही है वो। बोले खा लो, अपने भोजन मंगा था खा लो। वो सब कार्य ये गुस्सा खिला रही उसको, बिल जा रहा है मुरली पर, कि ये मुरली की वजह से है सब कुछ। तो ऐसे ही जब भी वो मुरली बजती है ना, तो वो पागल सी हो जाती है। फिर वो उनको कोई दुनिया की शक्ति रोक नहीं सकती है, कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। वो तुरंत ऐसे किसी को कुछ स्तनपान करा रही है बालक को अपना, वो छोड़ के जाती है। कोई किसी की रोटी तवा पर है आधी आधी पकी हुई, उसको छोड़ के जाते हैं। कोई किसी गाय के दूध निकाल रहे हैं, उसको छोड़ के जाते हैं। कोई सासू के चरण दबा रहे हैं, उसको छोड़ के जाते हैं। कोई ससुर को परोस रहे हैं, उसको छोड़ के जाते हैं। कोई पति की सेवा कर रही है, उसको छोड़ के जाते हैं। जो भी कर रहे हैं उसको छोड़ के भागने लगते हैं पागलों की तरह। और वो जाने के बाद तैयारी भी करते हैं कि भाई जो पुकार रहा है उसको मिलना चाहिए। तो आपने जो नीचे पहना है तो उसको ऊपर पहनते हैं, तो ऊपर पहना नीचे पहनते हैं, गाल को काजल लगाते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं पता नहीं, ऐसे उल्टी सीधी सिंगार करके वहां पहुंच जाते हैं। और वो जब जा रहे हैं ना, तभी उनको हवा की गति से भागते, तभी वो सब रोकते हैं उनको, सासू जी ये रोकती हैं, कभी हस्बैंड रोकते हैं, कभी ससुर रोकते हैं, कभी देवर रोकते हैं, कभी ननंद रोकती है, लेकिन कोई रोक नहीं पाता है उनको। लेकिन कभी कभी उनको रोक पाते भी हैं और रोक के उनको कमरे में बंद कर देते, लॉक कर देते हैं। तो ये मुरली का इतना प्रभाव है पांचवें धुन का कि वो प्राण छोड़ देती है अपने, क्योंकि बंधा हुआ क्या है, लॉक किसको किया गया है, शरीर को लॉक किया गया है। तो जो लॉक किया हुआ शरीर है उसको वहीं छोड़कर आत्मा स्वरूप में निकल जाते हैं वो रास में भाग लेने के लिए। तो रास में बहुत सारी गोपियां शरीर रूपी हैं, शरीर धारण करके जा रही हैं, और बहुत सारी गोपियां अनंग हैं, बिना शरीर की जाती है वहां पर भगवान के साथ जुड़ने के लिए। इतना प्रभाव है उसके अंदर, आत्मा के लिए सबसे आकर्षक ध्वनि है वो, सबसे आकर्षक ध्वनि। तो छठवां नोट जो है, इससे किसी भी मौसम में अगर छठवीं नोट बजती है तो शरद ऋतु का निर्माण होता है। जनवरी हो, फरवरी हो या दिसंबर हो, फर्क नहीं पड़ता है। जब भगवान की इच्छा होती है तो बजाते हैं ना, तो शरद ऋतु का निर्माण होता है। सब बहुत सुंदर हरियाली छा जाती है सब जगह। वैसे तो छह ऋतु जो है ना, वो पूरे वृंदावन धाम में इस तरह बसे हुए हैं, वो रेडी रहते हैं। हम लोग तो क्या देखते हैं, जुलाई आएगा तो बारिश आएगी, मई आएगा तो वैशाख में धूप होगी, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन इसमें सारे महीनों में सारे समय हर समय छह ऋतु तैयार रहते हैं। कभी कभी एक साथ छह ऋतु अपना आनंद दिखाते हैं भगवान के लिए, एक साथ। कैन यू इमेजिन दिस, एक साथ सर्दी भी है, वर्षा भी हो रही है, धूप भी आ रही है, कमल भी खिल रहे हैं, पीले फूल भी खिल रहे हैं, वसंत ऋतु का भी नज़ारा है, शरद ऋतु का भी है, वर्षा ऋतु का भी है, शिशिर ऋतु का भी है, हेमंत ऋतु का भी है, सब प्रकार के ऋतु एक साथ में अनुभव करने को मिलते हैं। ये ब्रज की महिमा है, क्योंकि ऋतु भी भक्त है भगवान के, वो व्यक्ति हैं, वो उस ऋतु, जैसे वसंत ऋतु है तो वसंत ऋतु जो है वसंत के जो माहौल है वो पैदा करने वाला भक्त है, वो अपनी इच्छा से अपनी शक्ति से वसंत ऋतु जो कहते हैं हम उसको प्रकट करते हैं। वैसे ही हेमंत ऋतु है, वैसे वर्षा ऋतु है, अपना अपना शक्ति है। तो सारे ऋतु अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भगवान के लिए देने को आतुर रहते हैं। अब भगवान जब भी पुकारते हैं वैसा ऋतु प्रकट हो जाता है, किसी भी समय। जनवरी में लगता है कि वर्षा होनी चाहिए तो वर्षा हो जाती है, उसमें भगवान लीला करते हैं। ये भी वृंदा देवी के आयोजन में होता है, वो लोग भी आतुर रहते हैं, मैडम कुछ सेवा है क्या, वसंत आ जाओ, आज तुम्हारा काम है, अभी चले जाओ, वर्षा ऋतु तुम आ जाओ, बरसो यहाँ पर, आज हमारी लीला इस प्रकार के करने वाली है। सब ऋतु ऐसे किम करह, किम करह का मतलब क्या है, क्या करूं, रेडी रहते हैं। यहाँ पर सब भक्तों के प्रश्न पूछते हैं किम करह। लेकिन छठे नोट के दो परिणाम हैं जो है यहाँ की स्थिति, यहाँ के जगह के लिए संबंधित है। छठी नोट बजते ही पत्थर पिघलने लगते हैं, चाहे ब्रह्मा जी का पर्वत हो या विष्णु जी का गोवर्धन पर्वत हो या चाहे शिव जी का नंदीश्वर पर्वत हो या चाहे चरण पहाड़ी का पर्वत हो या चाहे सखी गिरी हो या चाहे कोई भी पर्वत हो, सब पर्वत भी व्यक्ति हैं, भगवान के भक्त हैं। वो भगवान की मुरली की धुन सुनते ही पिघलने लगते हैं, इसीलिए चरण चिन्हों को निर्माण करते हैं। सातवीं नोट में क्या होता है, सातवीं नोट बजते ही सारे ऋतु अपना अपना सुंदर सौंदर्य एक साथ में प्रकट करने लगते हैं और दूर दूर के वनों से सुगंधित फूलों की सुगंध उस जगह प्रकट करने लगते हैं। और अब आता है आठवां स्वर। यह आठवां स्वर जो है वो केवल राधा रानी के लिए है, गोपियों को भी सुनाई नहीं पड़ता। वो ओनली वन टू वन कनेक्शन, पब्लिक कॉल नहीं है, कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं है, ये एक ही व्यक्ति सुनता है खाली उसको। तो भगवान जब छज्जज के आते हैं ना और राधा रानी नहीं आई हुई है तो भगवान मुरली बजा के बता देते कि मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ हो, कब आओगी। तो राधा रानी जो इतनी मधुर संभाषिणी, सुसंस्कृत उसका व्यवहार है, इतना इतने सुंदर सुंदर गुण है उनके अंदर और सारे सुशीलता के साथ में वो प्रकट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई प्रेम है तो ऐसे ही रोड पे ऐसे कुछ भी कर रहे हैं, जैसे पूतना ऐसे ऐसे आ रही थी ना भाग भाग के ऐसे ऐसे करके हुए, वो उच्चृंखल व्यवहार है। मतलब वो सुसंस्कृत घर की कन्या का व्यवहार नहीं है, वो ऐसे जैसे चल रही है उससे से पता चलता है कि ये ऐसी ही बाजारू औरत है। राधा रानी सुसंस्कृत कन्या है, वो भी अपनी भावनाओं को बड़ी ही इत्मीनान से और बड़ी ही क्या कहते हैं उसको, शालीनता से व्यक्त करती है। लेकिन जब आठवां स्वर बजता है तो राधा रानी भी अपना नियंत्रण खो बैठती है अपने ऊपर, जो सुसंस्कृत उसका स्वभाव है वो भी खोता हुआ नजर आता है जब आठवां स्वर बजता है, और वो भी पागलों की तरह स्वनियंत्रण खोकर पागलों की तरह भागने लगती है। लगती कि ऐसे किसी का ये कल्चर है क्या उसका, ऐसा लगता है उसको देखकर, इतनी वो ससंभ्रमित हो जाती है। राधा फिर आंखों का काजल पैर को लगाती है, कुमकुम आंखों पर लगा देती है और गले में कमर में कंठहार लगा देती है और पायल जो है वो हाथों में लगा देती है और ऊपर का वस्त्र नीचे, नीचे का वस्त्र ऊपर पहन लेती है। तो भगवान ने यहाँ पर जब मुरली बजाई ना, गर्ग संहिता में उसका वर्णन दिया है कि यहाँ पर जब भगवान ने मुरली बजाई तो ये पत्थर जो है जिसपे खड़े थे वो पिघलने लगा, ऐसे 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 नीचे जाने लगा और भगवान मुरली बजाते जा रहे थे तो गाय भाग के आई और गाय ने अपने उसी पर पत्थर पर ऐसे मोहित होकर आई ना, वो भी ऐसे ही अपना नियंत्रण खो के भाग के आ रही है जैसे कोई लोह चुंबक खींच रहा है उसको, मुंह ऊपर करके पूरा ऐसा ऐसा होना चाहिए वो ऐसे पूरा लाइन से शरीर तक पैर तक ऐसे लाइन से ऐसा मुंह है, मुंह खुला हुआ, बड़ी आंखें, पैर पूंछ ऊपर, कान ऊपर ऐसे और पैर उस शिखा में उस शिला में, तो शिला में पिघलती हुई शिला में उसके भी चरण चिन्ह निकलते। फिर भगवान मुरली बजा रहे हैं तो यहाँ पर एक डंडी रखी हुई है ऐसे गाय को हाँकने वाली, उसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लकुटी कहते हैं, लकुटी। वो लकुटी उनका बहुत बड़ा श्रृंगार है जो गाय चराने के लिए बड़े समारंभ पूर्वक बड़े सेरेमोनियसली वो लकुट दे जाती है। जब आप गाय चराने योग्य बन जाते हो तो बड़ा उत्सव के साथ में वो ग्वाल बाल को दिया जाता है, उसका वो क्या कहते हैं उसको, एक अलंकार है। तो वो भगवान गाय चराने आ रहे ना तो उनके कमर पे वो मुरली बजा रहे, दोनों हाथ बिजी हो गए तो यहाँ पर टेक के रखते हैं उसको, वो जमीन पर टेक रहा है, वो भी वहां पिघल कर ऐसे नीचे जाने लगता है, ऐसे जाने लगता है अंदर, जमीन के अंदर घुस जाता है वो। और वो ध्वनि जो है ना वो कहते हैं कि सारे भूर भुवर और स्वर जन तप और सत्य सारे सात लोगों को पार करता है। ब्रह्मा जी भी ऐसे ध्यान भंग हो जाता है उनका, ब्रह्मांड के आवरण को पार करके वो महाविष्णु के पास पहुंचते, जो योग निद्रा में लेटे हुए वो योग निद्रा से जग जाते हैं और भाव विभोर होकर डोलने लगते हैं। और जहाँ जहाँ विष्णु के साथ शेषशायी नाग हैं, क्षीरोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, महाविष्णु, ये जहाँ जहाँ लेटे हुए हैं वहाँ वहाँ शेष नाग जो है अपने फन को ऐसे हिलाकर डोलने लगते हैं। फिर वो आवाज़ जो है वो भौतिक दुनिया, महाविष्णु लास्ट पॉइंट है ना, महाविष्णु भौतिक दुनिया का लास्ट पॉइंट है, उसके आगे जाता है, विरजा नदी को पार करता है, ब्रह्म ज्योति में पहुंचता है, सारे वैकुंठ के जितने विष्णु हैं वो झूलने लगते हैं। उसके बाद में मथुरा द्वारका अयोध्या को पार करके गौलोक धाम में पहुंचता है, वहां पर गौलोकवासी भी मोहित हो जाते हैं। कितनी शक्ति है घुसने की उसके अंदर, इट्स कॉल्ड एज पेनिट्रेटिंग पावर, गहराई में सूक्ष्म रूप से जो प्रवेश करने की शक्ति है वो मुरली के स्वर में है, निशक्ति है मुरली के अंदर। तो ये मुरली जो है भगवान की, ये हमेशा बज रही है, हमको सुनाई नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर और हमारे आसपास बहुत ज्यादा शोर है। अगर आपके पास यहाँ पर लाउडस्पीकर बजता होगा, इधर जो बहुत धांगड़ांग ढांगड़ांग बज रहा है, तो ये रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, वही आवाज पकड़ेगा वो जो आपके आसपास जोर जोर से चल रहा है। और अगर आपको दूर से कोई बुला रहा है उसकी आवाज पर्याप्त है, लेकिन तब सुनाई पड़ेगी जब आपके आसपास शांति होगी, तब वो पुकार आपको सुनाई पड़ेगी। समझे आपको? तो एक तो अंदर शोर है काम क्रोध लोभ मद मोहर द्वेष का, और एक हमारे आसपास बाकी के लोगों का षड रिपुओं का शोर है, उसका आदान प्रदान भी हो रहा है, आपका षड रिपु उनके षड रिपु लड़ते भी हैं, कोई आपका अहंकार तुम्हारा द्वेष, मेरा अहंकार तुम्हारा लोभ, मेरा काम तुम्हारा ये, इसका भी युद्ध हो रहा है, उसका भी शोर हो रहा है। इन सारे शोरों के बीच में त्रिगुण के अंदर किए हुए कार्य का शोर भी है, कोई सत्वगुणी कार्य रजोगुणी कार्य है, कोई तमोगुणी कार्य है हम कर रहे हैं, हमारी महत्वाकांक्षा है, वो सबके शोर बज रहे हैं इधर, सब शोर शोर ही शोर है, कुछ है ही नहीं बाकी। आत्मा की आवाज़ क्षीण हो जाती है इसमें, आत्मा की आवाज़ तो सुनाई नहीं पड़ती है। और दूर से कोई आत्मा को पुकार रहा है, आ अब लौट चले, मुरली बजाकर बुला रहा है, चलो बस हो गया अभी नाटक यहाँ का, बहुत देर तक खेल लिया यहाँ पर, बहुत शोर कर लिया, बहुत फंस लिए, बहुत दुख भोग लिए, बहुत ठोकरें खा ली, चलो अभी लौट के, वो सुनाई नहीं पड़ता है जब तक ये शोर शांत नहीं होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि चिरंतन मुरली बजा रहे हैं और सब जीवों को पुकार रहे हैं कि हाँ खो गए हो, आपका स्थान तो मेरे पास है, क्यों भटक रहे हो, मैं बुला रहा हूँ आओ। ऐसे भगवान की मुरली की लीला है। तो भगवान की मुरली की तान अगर सुननी है तो अंदर का शोर को आपको शांत करना पड़ेगा। और वो शांत कैसे करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये शोर शांत होने की संभावना है। फिर तो जैसे जितने प्रमाण में शांत होगा उतने प्रमाण में वो मुरली की धुन आपको सुनाई पड़ी रही। तो भी मैंने वहां पर बताया था आपको, मदन मोहन गोविंद और गोपीनाथ है ना, शुरुआत संपर्क से होती है, उसके बाद में सेवा मिलती है, उसके बाद में सेवा की परिपूर्णता होती है। ऐसे कहते हैं सेवा की परिपूर्णता जब हो गई तब मुरली की धुन सुननी लगती है, सुनना आरंभ हो जाता है धीरे धीरे। तब लोग जाकर वहाँ पुकारते हैं कि ये गोपीनाथ जी आपकी मुरली की तान सुनाइए। मुरली की तान सुनाने को कब आओगे शाम कदम के तले, बोलो मुरली की तान सुनाने को कब आओगे शाम कदम के तले। ये हमारी पुकार है, कब सुनाई पड़ेगी? तो ये जो भगवान का वाद्य है ये सर्वश्रेष्ठ वाद्य है, इस वाद्य को कोई वाद्य डिफीट नहीं कर सकता है, खास करके जब भगवान बजाते हो तो सब वाद्य डिफीट हो जाते हैं, जब मुरली बजती है सब वाद्य शांत हो जाते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। हाँ अब आपको बताना है मुझे उत्तर, तीन प्रकार के होते हैं, एक 6 इंच की, एक 12 इंच की, एक 18 इंच की, कितने बताए मैंने? 6 इंच वाले का नाम है वेणु, 12 इंच वाले का नाम है मुरली, और सॉरी नहीं 12 इंच वाले का नाम है वंशी, मतलब बंसी बांसुरी, और 18 इंच वाले का नाम क्या है? मुरली। ठीक है, तो कहते हैं वेणु में 6 छेद होते हैं, बंसी में 9 छेद होते हैं और मुरली में 4 छेद होते हैं। और ये संगमरमर की बन सकती है, सोने की बन सकती है और बांस की बन सकती है। बांस की ओरिजिनल है बांसुरी, जो बांस की बनती है। लेकिन ये जो भगवान के वाद्य है ये स्वर्ण का भी बन सकता है और मार्बल का भी बन सकता है, पुराणिक। अभी तो आप किस चीज़ का बना सकते हो, पीतल का बना सकते हो, तांबे का बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। भगवान को क्या चढ़ाना है, आपको उस पर क्या वर्क देना है, सोने का देना है कि चांदी का दवा पानी लगाना है, वो अलग बात है। लेकिन पुराणोक्त तो दृष्टि से ये 3 प्रकार से बनती है। और कहते हैं कि जब ये मुरली बजती है ना तो सारी गोपियाँ उसका क्या कहते तड़पती हैं उसको, कि कितना भाग्य है मुरली का, हमको सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक इंतजार करना पड़ता है इनको मिलने के लिए। और ये देखो मुरली देखो कैसी भगवान के होंठों को चिपक के रहती है, दिन हो या रात हो, सबके बीच में हो या अकेले में हो, जब चाहे वो भगवान के होंठों को लगी रहती है और उसके अधरामृत को पीती रहती है। भगवान का जो अमृत है, भगवान के हृदय में भरा हुआ है वो अमृत, ये मुरली स्वीकार करती है। और जब वो बजती है तो अपने स्वर के माध्यम से ये अमृत लोगों के कानों तक पहुंचा देती है, फिर लोग अपने कानों से इसको हृदय में ग्रहण करते हैं। हृदय में इस मुरली के अमृत को जब अनुभव करते हैं तो वो अनुभव जो है वो आंखों के अश्रु द्वारा बाहर पड़ता है। तो अमृत भगवान के हृदय से निकलकर मुरली के माध्यम से, कानों के माध्यम से हृदय में पहुंच चुका है, वो अब नेत्रों के माध्यम से बाहर पड़ रहा है। और वो जो अमृत है नेत्रों के माध्यम से बाहर गिरने वाला, उसको पृथ्वी स्वीकार करती है और अपने आप को चैतन्य और जीवन प्राप्त करा देती है। ऐसी शक्ति है ये। तो ये गोपियां कहती है क्या भाग्य है इसका, कौन माँ है इसकी? तो कहते बांस जो है ना, बांबू, वो उसकी माँ है। ऐसे ऐसे भक्त को आपने जन्म दिया है, अपने बड़ी भाग्यवान हो कि आप में छेद पैदा करने से ही वो भगवान के होंठों को लगने लायक हो जाती है। इतना बड़ा भाग्य है कि नहीं? देखो कितनी बढ़िया कथा सुन रहे हो, क्या पोस्चर है उनका, देखो आनंद आ रहा है वो देख के आपको। ऐसे ही पड़े रहो, ऐसे रहो, हमको आपसे ऊर्जा मिल रही है। जय जय श्री राधे। शाम उसका फोटो निकालो एक बढ़िया सा। तो ऐसी मुरली की ये शक्ति है और इस मुरली के प्रभाव से बड़े बड़े साधु तो अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर चुके हैं, वो सभी खो जाते हैं अपने संतुलन को, सब पागल हो जाते हैं इससे, सब बुद्धिमान जीव जो है मूर्ख लगते हैं, ऐसा प्रभाव है मुरली का। लेकिन जब मूर्ख लगते हैं ना, केवल प्रेम के सागर में डूबते रहते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है, केवल प्रेम का सागर जो है ना वो लहरों में उमड़ जाता है और सब जीव के भौतिक बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। ठीक है, तो आगे इसका क्या क्या परिणाम है देखते हैं। जब भगवान अपनी मुरली बजाते हैं अपने लाल बिंब फल की तरह होठों को लगाकर, तो ब्रह्म शिव इंद्र आदि देवता सब कंफ्यूज हो जाते हैं। विद्वान लोग भी ये पता लगा नहीं सकते हैं कि यह स्वर का फॉर्मूला क्या है, दे कैन नॉट मेक आउट कंप्लीट। जो गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है, किम पुरुष है, जितने भी वाद्य बजाने वाले लोग हैं वो सब भाव विभोर हो जाते हैं। बाद में केवल कुछ भी समझ में न आने की वजह से हाथ जोड़कर मुरली को प्रणाम करते हैं, बस यही कर सकते हैं। अभी कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, हाथ ही जोड़ सकते हैं। विदग्ध माधव रूप गोस्वामी बताते हैं कि बलराम बता रहे हैं कि कृष्ण की मुरली सुनकर इंद्र रो रहे हैं स्वर्ग में और इसकी वजह से वर्षा हो रही है और ब्रज में बड़ा आनंददायक वातावरण निर्माण हो गया है। ऐसे ब्रज बलराम जी बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि बैल, हिरन, गाय सब लोग अपना चारा जो चबाना जो है ना वो चरवण करना भूल जाते हैं और वो जो आधा चबाया हुआ अन्न जो है उनके मुंह से नीचे गिरने लगता है, उनके कान खड़े हो जाते हैं, वो स्तब्ध हो जाते हैं जैसे कि चित्रपट हो। इस तरह से भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा गया है, देखो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि गायों के बछड़ों के मुख से दूध गिर रहा है और वो स्तब्ध हो गए हैं। ब्रज विलास स्तव इस ग्रंथ में कहा गया कि जब वीणा और मुरली बजती हैं साथ में तो हिरण जो है वो पागल से हो जाते हैं, एक जगह खड़े हो जाते हैं, अपना चारा चबाना भूल जाते हैं। भगवान की मुरली सुनकर आकाश में हल्की हल्की गड़गड़ाहट शुरू होती है, हल्की हल्की वर्षा होने लगती है, पुष्पों की वर्षा होने लगती है और भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, गोपियां राधा को कहती है कि ये मुरली की वजह से राधा रानी का जो चेस्टिटी है ना, पातिव्रत्य, वो भंग हो जाता है। राधा रानी ऐसे अपतिव्रता दिखने लगती है उसके व्यवहार से, नियंत्रण खोने की वजह से। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में रूप गोस्वामी लिखते हैं, वृंदा देवी राधा रानी गोपियों को कह रही है, वृंदा देवी कि मुरली की ध्वनि सुनकर वृक्ष और वेलियां आनंद से मशगूल हो जाती है, मदहोश हो जाती है। इस मुरली के भव्य दिव्य ध्वनि से सारा आसमान तो भर जाता है और कोयल, चक्रवाक, मोर और तोता जैसे पक्षियों की आवाज को वो समाप्त सा कर देता है, एज इफ नॉन एग्जिस्टेंट। और पर्वत जैसे कठोर जिसका नियंत्रण है अपने आप पर राधा रानी, उसका भी चिंतन जो है वो भंग हो जाता है, एकाग्रता भंग हो जाती है, नियंत्रण खो बैठती है। और ब्रजविलास स्तव नाम का ग्रंथ है, उसमें बहुत सुंदर वर्णन है कि कैसे राधा रानी रोट गई थी और हर तरह से उसको मनाया गया और नहीं मान गई वो। जब मुरली बजाई भगवान ने तो फिर वो उसका मान भंग हो गया, मान समाप्त हो गया और शांत हो गई वो। केवल कृष्ण की मुरली की ध्वनि ही उसको रिझा सकी। फिर एक दिन भगवान सो रहे थे, राधा रानी ने अपने पायल को निकाल दिया, आवाज न होना चाहिए ना, इसलिए पायल को निकाल कर अपने हाथों में लगा दिया और जरा सी भी ध्वनि न करते हुए राधा रानी आई और बहुत कोमलता से कृष्ण को देखा कि वो सो रहे हैं और चुपके से उनकी कमर में लगाई मुरली को उन्होंने चुरा लिया और वो चुरा कर उसने वृंदा देवी को दे दी। वृंदा देवी ने रूपमंजरी को दे दी और उन्होंने अपनी साड़ी में उसको छुपा लिया। किसी ने अपने बालों की वेणी के गुंथन में छुपा लिया उसको और वो तालियां बजाने लगी। उस आवाज़ से कृष्ण भगवान उठ गए और देखते तो मुरली गायब है। फिर उन्होंने, वो भी बहुत होशियार है भगवान, उन्होंने ना, हम कैसे बोलते थे अभी, आप जो कथा में मुझे लग रहा है कि आप आधे लोग ऐसे झपकी ले रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, हरे कृष्णा, फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि हाथ ऊपर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही भगवान ने कुछ ट्रिक करके सब गोपियों के हाथ ऊपर करवाए, जैसे हाथ ऊपर करवाए एक गोपी के हाथ से उधर बालों से मुरली गिर गई, भगवान ने उसको पकड़ लिया। इस प्रकार से कई बार ये मुरली छीनने की लीला होते रहती है और मुरली छीनने के बाद में भगवान भी बड़ी चतुरता से उस मुरली को वापस अपने हासिल कर लेते हैं। कभी भगवान मुरली राधा रानी का कुछ चुरा लेते हैं, वो राधा रानी मुरली चुरा लेती हैं, फिर वो बोलते हैं वो वापस करो फिर दे देते हैं वापस का। तो मुरली की एक आखिरी कथा बताता हूँ मैं कि भगवान गौचारण कर रहे हैं, शाम का समय है, लौट के आ रहे हैं तो भगवान एक जगह इकट्ठा होते हैं। कहाँ पर है वो जगह? टेर कदम, हाँ, नंदगांव में है। वहाँ पर भगवान कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और मुरली बजाते हैं। और क्या मुरली की विशेषता पता है? कितनी लाखों गायें हैं और हर एक गाय का एक नाम है, लेकिन कृष्ण भगवान जब वो धुन बजाते हैं, धुन तो एक ही बज रही है जैसे भी बज रही है, लेकिन जब वो आपके कान में आएगी, क्या नाम है आपका, आपको प्रियंका सुनाई पड़ेगा, इसको भक्ति सुनाई पड़ेगा। और जब आपको सुनाई पड़ रहा है प्रियंका, तो इसको प्रियंका नहीं सुनाई पड़ेगा, उसको भक्ति सुनाई पड़ेगा। इस तरह से हर एक गाय को उसका ही नाम सुनाई पड़ेगा, जैसे कि वो केवल मुझे ही पुकार रहे हैं, किसको नहीं पुकार रहे, ऐसे पर्सनल। हाँ, वो कैसा होता है ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप में है, ब्रॉडकास्ट नाम का ग्रुप होता है, आप एक मैसेज भेजते हो, सबको लगता है कि मैं केवल आपको मैसेज भेज रहा हूँ, मोस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस इज देयर। वैसे ही कुछ कुछ होता है इसके अंदर, एक धुन बजती है और भगवान ऐसा ट्रिक नहीं कर रहे आपके साथ। हम जब ब्रॉडकास्ट को बनाते हैं तो हमको इच्छा है कि भाई इतना समय किसके पास है, हमको एक साथ में सबको वो मैसेज भेजना है और लगना चाहिए केवल आपको भेज रहा हूँ, लेकिन भगवान नहीं। भगवान चाहते भी ऐसे हैं कि मैं सब गायों को उनके नाम से पुकारूं, लेकिन समय कम होने की वजह से वो एक धुन बजाते हैं और वो एक ही धुन में सभी गायों को अपना नाम सुनाई पड़ता है। इतनी सुंदर बात है देखो, और सब गाय वैसे ही भाग के पूंछ ऊपर उठा के भाग के आती है और उस पेड़ के ऊपर से देखने लगती है स्तब्ध होकर। उसके बाद बहुत सारी गाय आ जाती हैं, कुछ गिनी चुनी गाय जो है ना उनके कान में उनका नाम का ध्वनि पड़ चुका है, वो सुन भी चुकी है कि वो पुकार रहे हैं, फिर भी वो जानबूझ के अनसुनी कर देते हैं। फिर बाकी साहब गायों को बोले, कहते हैं आप यही रहो, मैं अभी आता हूँ। उतरते हैं और उन गायों को पास जाकर पीठ थपथपा कर पर्सनली दे के आते हैं, उसको कहते हैं अटेंशन सीकिंग, उनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है तो वो दे देते हैं भगवान को। और बड़े थपथपा कर ऐसे सबको लेके आते हैं और फिर सबको इकट्ठा करके फिर धुन बजाते हैं और उनके धुन के पीछे पीछे लोह चुंबक की तरह सब लोग नंदगांव की ओर चलने लगते हैं। गुरुदेव बताते हैं कि हम लोग भी उन बछड़ों की तरह है जो सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं, कब से पुकार रहे हो, आओ अब लौट चले, क्या है इस दुनिया में, इतनी ठोकरें खा ली है, चलो वापस लौट के चलो। फिर भी हम कहते हैं नहीं नहीं जलेबी खानी है, रुको नहीं नहीं अभी पोते को स्कूल लेके जाना है, नहीं नहीं अभी पोते की सगाई होने दो फिर आता हूँ मैं, है ना, क्या क्या बोलते रहते हैं अभी हम लोग। नहीं नहीं बंगला बनाने का अभी रेडी हो रहा है, अभी एक बार बंगले में प्रवेश करूंगा ना फिर मैं आ जाऊंगा। बहुत लोग ये बोलते कि पोते को अभी पोते का सगाई हो गया ना फिर, वो कहते हैं ना वो पणती सोन्याची पणती अशी उधळली ना मम्मी मुक्त यायला। आपको पता है हमारे इसमें एक ऐसा रिवाज है ब्राह्मणों के अंदर कि वो जो पणती यानी मतलब मेरा पोता या पोती, उसको जब लड़की होती है ना, खास करके लड़के की, अगर लड़के की लड़की मतलब नातों को अगर लड़की हो जाती है पणती कहते हैं उसको पणती, तो जब पणती होती है ना तो सोने की पणती बनाते हैं छोटी छोटी बहुत सारी, और वो जो दादी है परदादी उसके हाथ से उसके ऊपर ऐसे उधड़ते हैं उसको, मतलब बहुत बड़ा काम हो गया बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर ली ऐसे लगता है। और वो सब लोग पैच होते हैं कि तुम पणती हो गई, पणतू मतलब क्या कहते हैं उसको, परदादी बन गई आप ऐसा। तो हम लोग उसके लिए वेट करते हैं वो सम्मान एक बार मिल जाए, फिर भगवान का बुरा ही नहीं, वो तो वो है उधर ही खड़े हो, क्या कहाँ जाते हो, वो तो उधर ही है, कब से पार्किंग में है वो वेट कर रहे हैं हमारा, हम जा सकते हैं आराम से, ऐसा है हमारा। तो कहते हैं कि उनके लिए भी भगवान उतर कर जाकर ले थपथपा कर लेके आते हैं। हम थपथपाने के बाद भी बोलते हैं रुको जरा अभी तो गुलाब जाम बाकी है, अभी तो जलेबी खाइए खाली, ऐसे हमारी वृत्ति है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान को ऐसा इंतजार नहीं करवाना चाहिए, उनकी पहली पुकार से ही आपको आंसर देना है। पहली पुकार का मतलब क्या है, जब पहली बार किसी भक्त ने बोला ना आपको लो भगवान का नाम लो, भगवान के भक्त बनो, जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो जाओ, बस हो गया, अभी बाल भी सफ़ेद हो गए, अभी जो भी था जिस पर गर्व था सब निकल जा रहा है, अभी अभी भगवान के शरण ले लो, तब सुनना चाहिए। वो भगवान की मुरली बज रही है आपके लिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो अलग से मुरली बजाने की जरूरत नहीं है, वही उनकी पुकार है, आपके समझने के लायक आपके कान तक पहुंच रही है, वो आपकी भाषा में जैसे आपको समझे उस तरह से पहुंच रही है, वो अलग अलग प्रकार से आती है वो मुरली, कभी संकट के रूप में आती है, कभी आपको तमाचा देते हैं, वो मुरली अलग अलग प्रकार से बजती है, कभी डांट के रूप में बजती है, कभी संकट के रूप में बजती है, कभी उपदेश के रूप में बजती है, कभी किस रूप में बजती है, लेकिन हम लोग जगते नहीं उससे, हम लोग ऐसे सुबह ऐसा अलार्म बंद कर देते हैं, या तो उसको डालते हैं स्नूज के ऊपर, अलार्म को डालते हैं स्नूज के ऊपर, और स्नूज के ऊपर के ऊपर ऊपर के ऊपर कई बार स्नूज होते हैं लेकिन हम लोग उठते ही नहीं है, ये हमारी अवस्था है। हम लोग सो रहे हैं और ना तो सोने का भावना कर रहे हैं, दोनों तरफ से मुश्किल है हमारे लिए, और पुकार तो हो ही रही है, पुकार तो आ ही रही है अपने हमारे लिए, हम प्रतिसाद नहीं दे रहे उसको। तो जब हमारी तरफ से ये प्रतिसाद मिलेगा भगवान को तो फिर हमारा जीवन में सही रूप में वास्तव में आनंद का आरंभ होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।